आस्तिक अरुणिमा को लेकर समंदर किनारे खाली रेत पर चल रहा था। रात की हल्की रोशनी उनके इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही थी। तभी अचानक आस्तिक रुक गया और अरुणिमा को देखने लगा। अरुणिमा ने उसे देखते हुए हैरानी से कहा, क्या मुझे फिर से गोद में उठाने का सोच रहे हो? और अगर सोच भी रहे हो तो मत सोचना, मुझे पैदल ही चलना है। ऐसे खाली रेत पर चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तब अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही समंदर किनारे रेस लगाया करती थी। आस्तिक उसकी बात सुनकर मुस्करा दिया और हामी में सिर हिलाया। फिर उसने अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा, मतलब अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम एक बार फिर से समंदर किनारे दौड़ लगाना चाहोगी? अरुणिमा हंसते हुए बोली, अब कैसे कर सकती हूँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। तब मैं छोटी थी और ऐसे ही समंदर किनारे हमारा फार्म हाउस था, जहाँ पर मम्मी पापा और मैं छुट्टियों में आया करते थे। फार्म हाउस में जो केयरटेकर थे उनके बच्चों के साथ मैं खूब खेला करती थी। समंदर के किनारे इसी तरह रेस लगाती थी। वो मेरे पीछे भागते थे और मैं उनके आगे आगे भागती थी। मैं हमेशा उनसे जीत जाती थी। उसके बाद हम रेत के घर बनाते थे। मेरा घर कभी बनी नहीं पाता था, हमेशा टूट जाता था। लहरें मेरे महल को हमेशा तोड़ देती थी। लेकिन मेरी एक दोस्त ने मेरी मदद की। उसने लहरों और मेरे महल के बीच रेत की एक दीवार बना दी, जिससे लहरें उसी दीवार से टकरा जाती थीं और मेरा महल बच जाता था। अरुणिमा ये सब इतने उत्साह से बता रही थी जैसे कल की ही बात हो। आस्तिक उसके चेहरे की खुशी देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम एक बार फिर से महल क्यों नहीं बनाती हो? अरुणिमा हंसते हुए दोनों हाथ आगे करके बोली, ये देखो, मैंने हमारी डेट के लिए मैनीक्योर करवाया है और नेल एक्सटेंशन भी नए हैं। अगर मैं रेत में हाथ डालूंगी तो ये खराब हो जाएंगे। आस्तिक मुस्कुराकर बोला, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी ये खूबसूरत नाखून खराब नहीं होने देंगे, लेकिन महल का सपना अधूरा भी नहीं रहने देंगे। अरुणिमा उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और बोली, मतलब मैं समझी नहीं। तभी आस्तिक मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर करीब आया। कुछ पल तक वो बस उसे देखती रही। फिर आस्तिक ने अपनी जेब से एक ब्लाइंड फोल्ड निकाला और उसकी आंखों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मतलब ये कि कुछ सपने अंधेरे में ही देखे जाते हैं और जब आंखें खुलती हैं तो रोशनी उनका इंतजार करती है। ब्लाइंड फोल्ड अब अरुणिमा की आंखों पर था। उसने अपने हाथों से छुआ, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो घबराई और बोली, आस्तिक ये क्या कर रहे हो, मेरी आंखें क्यों बंद कर दी? अब मैं चलूंगी कैसे, अगर मैं गिर गई तो? आस्तिक ने उसे थामते हुए मोहब्बत भरे अंदाज में कहा, अगर तुम डगमगाओगी तो मैं सहारा दूंगा, और अगर तुम गिर गई तो वो मेरी मोहब्बत की हार होगी। उसके शब्द सुनकर अरुणिमा ढीली पड़ गई। आस्तिक ने उसकी कलाई पकड़ी और एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। अरुणिमा उसके कदमों के साथ कदम मिलाकर पीछे चल रही थी। उसे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन आस्तिक के हाथों की पकड़ ने उसे यकीन दिला दिया था कि वो उसे गिरने नहीं देगा। आस्तिक ने उसे एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अरुणिमा के कदम रुक गए थे, वो आस्तिक की अगली हरकत का इंतजार कर रही थी। आस्तिक ने उसके पीछे से ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया। अरुणिमा की आंखें अभी बंद थीं। जैसे ही ब्लाइंड फोल्ड हटा उसने पलकें झपकाईं। अचानक आई रोशनी से उसकी आंखों में चुभन हुई। उसने दो तीन बार पलकें झपकाईं और जब सामने देखा तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सरप्राइज, आस्तिक ने उसके कानों में कहा। अरुणिमा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हैरानी से आस्तिक को देखा और बोली, तुम्हें कैसे पता? आस्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कैसे पता चला ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ सरप्राइज कैसा लगा? अरुणिमा खुशी के आंसुओं के बीच फार्म हाउस को देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है, इतना कि मैं बता नहीं सकती, ये तो मेरे महल से भी ज़्यादा खूबसूरत है। आस्तिक ने उसे साइड हक देते हुए कहा, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा, इसीलिए ही इस सरप्राइज़ के लिए तुम्हें इतना इंतज़ार करवाया। तुम्हारा वही फार्म हाउस जहाँ बचपन में तुम अपने परिवार के साथ छुट्टियाँ बिताने आया करती थी। अरुणिमा की आँखें भर आईं। फार्म हाउस उसके बचपन की अनगिनत यादों का गवाह था। वो आगे बढ़ी और जैसे ही लोहे का दरवाज़ा सामने आया उसके चेहरे पर खुशी और निखर आई। उसने दोनों हाथों से दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। पहला कदम रखते ही बचपन की सारी यादें सामने ताज़ा हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे छोटी सी अरुणिमा उसके सामने खड़ी है और माता पिता उसके पीछे दौड़ रहे थे। ये दृश्य देखकर अरुणिमा की आंखों में खुशी के आंसू और होठों पर मुस्कान आ गई। ये फार्म हाउस उसे बचपन की छुट्टियों की याद दिला रहा था, जब वो अपने माता पिता के साथ यहाँ आती थी और बड़ी बेसब्री से छुट्टियों का इंतज़ार करती थी। लेकिन फिर वक्त में करवट ली और उनका यहाँ आना बंद हो गया। उसके पिता को ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। अरुणिमा ने आस्तिक की तरफ देखा, जो उसके पास खड़ा उसकी हर प्रतिक्रिया देख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस फार्म हाउस के बारे में तुम्हारे पिता से पता चला था, जब वो मुंबई हमारे घर आए थे तुमसे मिलने। तब बातों बातों में उन्होंने ये प्रॉपर्टी बताई थी। तभी मैंने तय कर लिया था कि ये घर तुम्हारे लिए दोबारा खरीदूंगा, लेकिन मालिक बेचने को तैयार ही नहीं था। अरुणिमा ने चौंकते हुए कहा, तो तुमने वही किया ना, ब्लैकमेल, धमकी या फिर किडनैप? तुमने कहा था कि तुमने गलत रास्ता छोड़ दिया है और तुम्हारे अंदर का बीस्ट अब तुम पर हावी नहीं होता है। आस्तिक जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंज उठी। अरुणिमा उसे हैरानी से देख रही थी।
आस्तिक ने हंसते हुए कहा, लोग सच कहते हैं, अगर कोई चोर चोरी छोड़कर भी सुधरना चाहे तो भी लोगों की नजरों में वही चोर रहता है, जैसे तुम मुझे शक की नजरों से देख रही हो। अरे बाबा, इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए मैंने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया और ना ही बीस्ट को बाहर लाया है। इसका मालिक खुद ही बेचना चाहता था। मैंने एजेंट से कह रखा था कि जैसे ही ये बिकने पे आए मुझे सबसे पहले बताना, तो जैसे ही वो बेचने पर राजी हुआ मैं वहां पहुंच गया और कानूनी तरीके से इसे खरीद लिया। अब ये घर तुम्हारा है।